श्रोताओं नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी हमारे साथ आज का बाइबल अध्ययन करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से यशाया नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और इसका मुख्य विषय है मसीह का आगमन और छुटकारा। प्रिय श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। लीजिए, प्रस्तुत है ये बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी कुशल पूर्वक हैं और फिर से आज परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम बाइबल में से यशाया की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और अब तक हमने पिछले अध्ययन में देखा है कि परमेश्वर इसराइल को उनके परित्याग के कारण बताता है कि पुत्र परमेश्वर अपने अपमान की चर्चा भी करता है। और तब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से सहायता मांगें। हमारे दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। आज जब हम आपके वचन में से फिर से एक बार सुनना और सीखना चाहते हैं, मनन चिंतन करना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि हर एक श्रोता भाई बहन आपके वचन के द्वारा आशीषों को प्राप्त कर सके। आज के वचन के द्वारा आप हम सब से बोले और बातचीत करें। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आइए अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और आज हम अपने अध्ययन में देखेंगे यशाया की पुस्तक उसके 52 अध्याय से, जिसका विषय है इसराइल के शेष मुक्ति प्राप्त को निमंत्रण, इसराइल राज्य की स्थापना, दुखी सेवक का परिचय। मेरे मित्रों, यशाया के अध्ययन में हमने पाशुर छाया में कहे या पृष्ठभूमि में कहें यहोवा के दास सेवक को देखा है। अब जब हम अध्याय 53 में पहुंचेंगे तो अति स्पष्ट रूप से देखेंगे कि यहोवा का यह सेवक प्रभु यीशु के अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं है। अलार्म घड़ी के पिछले अध्याय में अलार्म लगातार चेतावनी देता रहा है, जागो जागो। इस अध्याय में भी हमारे सामने अलार्म बज रहा है, इसराइल के मुक्ति प्राप्त बचे हुओं को निमंत्रण। आइए हम देखें यशाया की पुस्तक 52 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, हे सियोन जाग जाग, अपना बल धारण कर, हे पवित्र नगर यरूशलेम अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश न करने पाएंगे। जब परमेश्वर कहता है हे सियोन, तो उसके कहने का अर्थ किसी बड़े और मशहूर नगर से नहीं है, उसका अभिप्राय सियोन से ही है जो इसराइल में एक भौगोलिक स्थान है। यह यरूशलेम का पर्वतीय क्षेत्र है, यह दाऊद का अति प्रिय स्थान है। यरूशलेम आशीषों से पूरा होगा और तब वह अनाकर्षक स्थान नहीं रहेगा। पहली बार यरूशलेम को देखकर आप आकर्षित नहीं होंगे। जी हाँ, बहुत सारे लोगों का कहना है कि वे यरीहो से आए और जैतून के पर्वत के बैतनिया से चक्कर काटकर मंदिर में भी प्रवेश किए, परंतु यरूशलेम के शहरपना और पूर्वी फाटक पर भी पहुंचे। यह बड़ा मनमोहक दृश्य है। दोपहर ढल चुकी है और नगर पर छाया गिर रही थी, अतः उस नगर प्रवेश के लिए दूसरे दिन तक रुकना पड़ा। यह एक अधीरता की प्रतीक्षा होती है, परंतु दूसरा दिन सबके लिए बड़ी निराशा का कारण होता है। मेरे विचार में तो वह नगर सुंदर नहीं है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि वह परिस्थिति के अधीन सुंदर नगर है। यह परमेश्वर का दृष्टिकोण है। मेरे प्रियो, मैं स्वीकार करता हूं कि उसकी भौगोलिक स्थिति सुंदर है, परंतु नगर नहीं। यहां वह कहता है कि आने वाले एक दिन वह नगर अति सुंदर होगा। यह इसलिए होगा कि प्रभु यीशु अपना मुक्ति कार्य को पूरा करेगा। परमेश्वर प्रभु यीशु के द्वारा इस भौतिक जगत का उद्धार करेगा जो आज पीड़ा के कारण कराहता है और अर्तनाद करता है। प्रभु यीशु के उद्धार के कारण संपूर्ण जगत एक रमणीय स्थान होगा। वह हमारे देह का उद्धार करेगा, हमें नई देह दी जाएगी और ऐसा होने पर संपूर्ण सृष्टि का उद्धार होगा। मेरे मित्रों, उद्धार मनुष्य का ही नहीं प्रत्येक वस्तु का होगा। यह परमेश्वर द्वारा व्यवस्था में व्यक्त उद्धार है। यशाया के पुस्तक 52 अध्याय के 2 पद में लिखा है, अपने ऊपर से धूल झाड़ दे हे यरूशलेम, उठ हे सियोन की बंदी बेटी, अपने गले के बंधन को खोल दे। मेरे मित्रों, आज अरब में सब पवित्र स्थल पर आराधनालय बने हुए हैं। रूस की ऑर्थोडॉक्स कलीसिया, यूनान की ऑर्थोडॉक्स कलीसिया और रोम की कलीसिया, लूथरन तथा चर्च ऑफ ऑल नेशंस, ये हर जगह आराधनालय बने हुए हैं। यरूशलेम को धर्म से मुक्ति पाना है, उसे पाप से अर्थात पाप के बंधन से मुक्त होना है, वहां की गिरी हुई सभ्यता से मुक्त होना है। उनकी मुक्ति का दिन आ रहा है जो सहस्त्र वर्षीय राज्य में होगा। 2500 वर्षों से वह नगर बंधुआई में है और अन्य जातियों द्वारा रौंदा गया है, परंतु वह दिन आता है जब दासत्व के बंधन तोड़ दिए जाएंगे। यशाया 52 अध्याय के 3 पद में लिखा है, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, तुम जो सेंत मेंत बिक गए थे, इसलिए अब बिना रुपया दिए छुड़ाए भी जाओगे। जी हाँ, ध्यान दीजिए, परमेश्वर के इस पवित्र नगर को बंदी बनाने वालों से परमेश्वर ने कुछ नहीं लिया था, इसलिए वह उन्हें कुछ देगा भी नहीं। वह उनसे लेकर उसका पुनः स्थापन करेगा। यशाया 52 के 4 पद में लिखा है, प्रभु यहोवा यूं भी कहता है, मेरी प्रजा पहले तो मिस्र में परदेशी होकर रहने को गई थी और अश्शूरियों ने भी बिना कारण उन पर अत्याचार किया। याकूब सम्मान सहित मिस्र बुलाया गया था, परंतु उसके वंशजों को वहां दास बना लिया गया था। अश्शूरों और अन्यों ने उसे बराबर से सताया। सहस्त्र वर्षीय राज में सब कुछ समाप्त हो जाएगा। यशाया 52 के 5 पद में हम पढ़ते हैं, इसलिए यहोवा की यह वाणी है कि मैं अब यहां क्या करूं, जबकि मेरी प्रजा सेंत मेंत हर ली गई है। यहोवा यह भी कहता है कि जो उन पर प्रभुता करते हैं वे उधम मचा रहे हैं और मेरे नाम की निंदा लगातार दिन भर होती रहती है। परमेश्वर अपने प्रजा के त्याग के वर्षों का लाभ नहीं उठाता है, अतः वह कहता है यशाया 52 के 6 पद में, इस कारण मेरी प्रजा मेरा नाम जान लेगी, वह उस समय जान लेगी कि जो बातें करता है वह यहोवा ही है, देखो मैं ही हूं। यह एक अति उत्तम विचार है। 2000 वर्ष पूर्व जब प्रभु यीशु यहां पर था इस पृथ्वी पर, तब उन्होंने उसे नहीं पहचाना। यदि वे उसके उस आगमन के दिन को पहचान लेते तो वे उसके दूसरे आगमन पर भी उसे पहचान लेते। वह कहेगा, देखो मैं ही हूं। लोथ ने इसका अनुवाद किया है, मैं यहां हूं। संसार ने मसीह का त्याग किया है, वह उसे नहीं पहचानता है। एक दिन वह मसीह यीशु को त्यागने वाले संसार से कहेगा, मैं यहां हूं। उस दिन उन असंख्य जनों के लिए बहुत देर हो जाएगी कि उसे ग्रहण करें। मेरे मित्रों, हम आगे देखते हैं इसराइल राज्य की स्थापना के विषय में। यशाया 52 अध्याय उसके 9 पद में लिखा हुआ है, हे यरूशलेम के खंडहरों, एक संग उमंग में आकर जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है, उसने यरूशलेम को छुड़ा लिया है। आज आप यरूशलेम के बारे में एक विशेष बात देखेंगे, वहां आनंद का गीत नहीं है, वहां की कलिसियाओं के साथ भी यह सच है। मैंने सुनने का प्रयास किया परंतु आनंद का गीत कभी नहीं सुना। ओमर मस्जिद के क्षेत्र में भी जो मंदिर का स्थान है सब कुछ नीचे के स्तरों में ही है। यदि आप बिलाब की दीवार के पास जाएं, जो टूटी हुई दीवार है, वहां आप केवल रोना ही सुनेंगे और यहूदियों को उस पर सिर पटकते हुए देखेंगे, परंतु सहस्त्र वर्षीय राज्य में सब कुछ आनंद में बदल जाएगा। वे आनंद से उमड़ते रहेंगे, वे एक साथ गाना गाएंगे, वह आनंद का समय होगा। मेरे प्रियो, आज भी परमेश्वर नहीं चाहता कि हम मुंह लटकाए हुए विचरण करने वाले भक्त हों, जो केवल शिकायत करते फिरते हैं, केवल आलोचना करते हैं। वह चाहता है कि हम आनंद से भरे हों। यूहन्ना ने अपनी पत्री में लिखा है, पहला यूहन्ना के पत्री 1 अध्याय उसके 4 पद में, ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। जी हाँ, थोड़ा सा आनंद नहीं, हर समय का आनंद। सहस्त्र वर्षीय राज्य वह समय होगा जब परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु द्वारा सिखाई हुई प्रार्थना का उत्तर देगा, तेरा राज्य आए। हम मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 10 पद में इसे पाते हैं। उस दिन आंसू और दुख समाप्त हो जाएंगे, उस दिन पृथ्वी पर रोना समाप्त हो जाएगा, उस दिन सर्वत्र आनंद होगा और वे जानेंगे कि सहस्त्र वर्षीय राज्य आ गया है। अब हम आगे देखते हैं दुखी सेवक का परिचय। यदि आपको किसी के जन्म पर आनंद मनाना है तो किसी को पीड़ा सहन करना होगा, अतः यहाँ सेवक के कष्ट को बताया गया है। यशाया की पुस्तक 52 अध्याय के 13 पद में लिखा है, देखो मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, वह ऊंचा महान और अति महान हो जाएगा। विवेक के बारे में कहा तो जाता है, परंतु क्या मनुष्य विवेकी है? आप देखेंगे कि विवेक तो किसी में है ही नहीं, परंतु प्रभु यीशु जब आएगा तब उसका व्यवहार विवेकी होगा। यहाँ पर वही दृश्य प्रस्तुत किया गया है, वह ऊंचा और अति महान हो जाएगा। पौलुस फिलिपी की कलीसिया को लिखता है 2 अध्याय उसके 9 से 11 पद में, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में है और जो पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। मेरे प्रियो, अब हम दुखी सेवक को देखते हैं। यशाया की पुस्तक 52 अध्याय उसके 14 पद में लिखा है, जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा जान न पड़ता था, और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी न रह गई थी। यह प्रभु यीशु के क्रूसीकरण का चित्रण है। इस पद से अध्याय 53 का मार्ग तैयार होता है। यहां मैं सावधान रहना चाहता हूं कि क्रूस पर प्रभु यीशु के कष्टों पर मनन करना सदैव ही रूढ़िवाद नहीं है, कभी कभी तो यह गंवारूपन भी होता है। अंधकार के उस समय जब मनुष्य कुछ नहीं कर पा रहा था, तब परमेश्वर का पुत्र क्रूस पर काम कर रहा था। परमेश्वर के मेमने ने संसार के पापों का दंड चुकाया। 3 घंटों के अंधकार के बाद जब क्रूस पर प्रकाश चमका, तब मनुष्य आश्चर्यचकित रह गया होगा। मेरे प्रियो, वह मनुष्य के समान ही नहीं दिखता है, वह केवल कांपती हुई एक देह थी, उसका वर्णन असंभव है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि न तो उसकी कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। यशाया के पुस्तक 53 अध्याय के 2 पद में हम इसे देखेंगे। यही कारण था कि परमेश्वर ने क्रूस पर अंधकार का पर्दा डाल दिया था। वहां मनुष्य की विकृत जिज्ञासा की पूर्ति के लिए कुछ भी नहीं था। उसका रूप यहां तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा न जान पड़ता था। मेरी कलीसिया जहां मैं जाता हूं, वहां पर एक बार एक बहुत अच्छे अगुए थे। वे अग्निशमन विभाग में कप्तान थे। वह सदैव ही प्राथमिक चिकित्सा किट साथ में रखने की बात करते थे। वह प्राथमिक चिकित्सा की कक्षाएं भी लेते थे। उन्होंने लगभग 1 दर्जन बार पूछा कि मेरे पास प्राथमिक चिकित्सा के लिए कुछ किट है या नहीं। उनके बार बार कहने पर मैंने अंततः अपने पास में एक प्राथमिक चिकित्सा किट रख लिया। एक दिन सुबह आग की चेतावनी पर अग्निशमन कर्मी दौड़े। जिस हुक और सीढ़ी पर वह सवार था उसे एक दूध की गाड़ी ने टक्कर मार दी। उस पर सवार कर्मी सड़क पर रगड़ने लगा। सुबह 5 बजे मेरे पास फोन आया कि वह अस्पताल में है। जब मैं वहां पहुंचा तो उसकी सांसें चल रही थी और उसका पिता उसके पास बैठा था। मैंने देखा कि उसका चेहरा ऐसा विकृत हो गया था कि पहचानना मुश्किल था। मैं केवल सांस लेता एक चेहरा देख रहा था। उसकी शीघ्र ही मृत्यु भी हो गई। मेरे प्रियो, उस दिन से ही मैं सोचता रहा हूं कि प्रभु यीशु का चेहरा बहुत अधिक बिगड़ा हुआ था, इस कप्तान से भी अधिक। वह केवल कांपती हुई एक देह थी। मेरा प्रभु क्रूस पर ऐसा दुख उठा रहा था किस लिए? सिर्फ आपके लिए और मेरे लिए। मेरे विचार में उसका वर्णन करने में मैं गंवारू नहीं होना चाहता हूं, क्योंकि अगला पद कहता है, यशाया 52:15 में लिखा हुआ है, वैसे ही वह बहुत सी जातियों को पवित्र करेगा और उसको देखकर राजा शांत रहेंगे, क्योंकि वे ऐसी बात देखेंगे जिसका वर्णन उनके सुनने में भी नहीं आया, और ऐसी बात उनकी समझ में आएगी जो उन्होंने अभी तक सुनी भी ना थी। जी हाँ, बहुत सी जातियों को पवित्र करेगा अर्थात उसकी मृत्यु अनेक जातियों को अचंभित करेगी। उसकी मृत्यु किसी के लिए भी एक आम बात नहीं थी। उसकी मृत्यु सर्वथा भिन्न थी। यदि उसकी मृत्यु मनुष्य को अचंभित न कर दे तो हमने उसकी चर्चा उचित रूप से नहीं की है। यह अध्याय हमें अगले महान अध्याय के गहन भेद के लिए तैयार करता है। यहां पर अध्याय 52 खत्म होता है और अब हम अध्याय 53 में आते हैं और इसके विषय में हम देखेंगे उद्धारकर्ता के कष्ट, उद्धारकर्ता का संतोष। जी हाँ, वे जो परमेश्वर के वचन से परिचित हैं उन्हें यह बोध हो गया है कि यशाया अध्याय 53 और भजन संहिता 22 हमें संपूर्ण बाइबल में मसीह के क्रूसीकरण का सर्वाधिक सजीव चित्रण प्रदान करते हैं। यह उन अनेकों के लिए विस्मय का कारण होगा जो यह सोचने के लिए आदि हैं कि केवल चारों सुसमाचार वृत्तांतों में ही परमेश्वर के पुत्र की भयानक मृत्यु का वर्णन पाया जाता है। यदि आप सुसमाचार वृत्तांतों को सावधानी पूर्वक देखें और पढ़ें तो पाएंगे कि क्रूसीकरण से संबंधित कुछ ही घटनाएं दी गई हैं और वास्तविक क्रूसीकरण पावन अवरोधों के द्वारा अनदेखा किया गया है। पवित्र आत्मा ने क्रूस के ऊपर मौन का पर्दा डाल दिया है और जिज्ञासु जनसमूह के निहारने और व्यंग के लिए चटक विवरणों में से एक भी नहीं दिए गए हैं। यीशु की हत्या करने वाले निर्दयी जनों के लिए कहा गया है कि वे बैठकर उसका तमाशा देख रहे थे। आपको और मुझे उस जनसमूह के साथ सहभागिता की अनुमति नहीं है। उन्होंने भी वास्तव में सब कुछ नहीं देखा था, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र के कष्टों पर अंधकार का पर्दा डाल दिया था। मेरे प्रियो, कुछ सनसनीजनक प्रचारक बड़ी सजीवता से मसीह के क्रूसीकरण की कल्पना करके उसका विवरण सुनाते हुए प्रसिद्धि पाना चाहते हैं। कला ने तो पैश्विक वास्तविकता से उसकी मृत्यु का विवरण किया है। हम तो उसके कष्टों को अनंत काल तक ठीक से नहीं समझ पाएंगे। अति संभव है कि परमेश्वर नहीं चाहता था कि हमें जो नहीं जानना है उसे जाने। वह नहीं चाहता था कि एक अति पवित्र बात को हम एक आम बात समझें। हमें सदैव ही स्वयं को स्मरण करवाते रहना है कि पवित्र बातों से परिचित होना खतरनाक है। यशाया की पुस्तक 52:11 में वह कहता है, पात्रों को ढोने वालों अपने को शुद्ध करो। प्रभु यीशु के जन्म के 700 वर्ष पूर्व यशायाह ने प्रभु यीशु के कष्टों का विवरण सुनाया, ऐसा विवरण जो हम अन्य कहीं भी नहीं देख पाएंगे और न ही सुन पाएंगे। आगे बढ़ने से पूर्व हमें निश्चय ही एक प्रश्न का उत्तर देना है जो संभवतः किसी के मन में उठे। आप कैसे कह सकते हैं कि यशाया प्रभु यीशु की मृत्यु का विवरण सुना रहा है? उसकी यह पुस्तक तो मसीह के जन्म से 700 वर्ष पूर्व लिखी गई थी। कूशी खोजे ने रेगिस्तान के मार्ग में फिलिपुस से यही तो पूछा था। वह यरूशलेम से अपने देश को जा रहा था। मार्ग में वह यशाया की पुस्तक उसके 53 अध्याय को पढ़ रहा था। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 8 अध्याय के 32 पद में उस विशेष अंश का भी उल्लेख किया गया है जो वह पढ़ रहा था। मेरे प्रियो, संडे स्कूल में हमें कुछ ऐसा समझाया जाता है कि हम कल्पना करते हैं कि वह अपने रथ में सवार एक हाथ में घोड़ों की लगाम और दूसरे हाथ में धर्मशास्त्र लिए हुए पढ़ रहा है। हम सोच ही नहीं पाएंगे कि ऐसा नहीं था। वह एक सरकारी अधिकारी था, अतः उसका रथ बड़े ठाट बाट का होगा, उसके बैठने का स्थान संपूर्ण सुविधा का होगा और रेगिस्तान की गर्मी से बचने के लिए छाया का प्रबंध भी उसमें होगा। उसका कोचवान अर्थात रथ चलाने वाला ही रथ चला रहा होगा। वह यशाया 53 अध्याय के 7 और 8 पद से पढ़ते हुए उसने फिलिपुस से पूछा, जिसे हम प्रेरितों के काम 8 अध्याय के 34 में पाते हैं, मैं तुझसे विनती करता हूं, यह बता कि भविष्यद्वक्ता यह किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में? मेरे प्रियो, हम यह कैसे निश्चित जानेंगे कि अध्याय 53 में यशाया प्रभु यीशु के विषय में भविष्यवाणी कर रहा है? फिलिपुस हमें उत्तर देता है जो उसने उस खोजे से कहा, प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसके 35 पद में। तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। हम देखते हैं योहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 38 पद में यीशु ने स्वयं यशाया की पुस्तक 53 अध्याय को अपने आप से संदर्भित किया था। प्रभु यीशु के सुसमाचार के संबंध में पौलुस भी इसी अध्याय का संदर्भ रोम की कलीसिया को देता है, रोमियों की पत्री 10 अध्याय उसके 16 पद में। मेरे मित्रों, धर्मशास्त्र संदेह की गुंजाइश नहीं छोड़ता है कि यशाया अध्याय 53 मसीह के संबंध में है, वरन यह प्रभु यीशु का क्रूस पर मरने का चित्र है। प्रथम 9 पद हमें हमारे उद्धारकर्ता के कष्टों का विवरण सुनाते हैं। शेष अध्याय हमारे उद्धारकर्ता के संतोष की चर्चा करता है। मेरे प्रियो, हम देखेंगे कि ये दो विषय साथ साथ चलते हैं, कष्ट और संतोष। कष्ट सदा ही संतोष के पूर्व आता है। अधिकांश जन आनंद का छोटा मार्ग अपनाना चाहते हैं, वे कष्टों से बचने का प्रयास करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि संतोष प्राप्ति का कोई छोटा मार्ग नहीं है। यही कारण है कि मैं उन सब छोटे मार्गों का परित्याग करता हूं जो दावा करते हैं कि उनके पास जीवन की सब समस्याओं का समाधान है और वे आपको परमेश्वर के हथियारों से लैस कर देंगे। परमेश्वर के पास कोई छोटा मार्ग नहीं है, यहां तक कि परमेश्वर ने भी छोटा मार्ग नहीं अपनाया था। वह चाहता तो क्रूस से बचकर ताज प्राप्त कर सकता था। शैतान ने उसके सामने यही तो प्रस्ताव रखा था, परंतु संतोष से पूर्व कष्ट आते हैं। इसकी अनेक अभिव्यक्तियां हैं, परीक्षाओं से विजय तक, बादलों के बाद धूप, अंधकार के बाद ज्योति आती है, घने बादलों के बरसने पर फूल उगते हैं। ये सारी बातें आती है। यह परमेश्वर की कार्य विधि है, क्योंकि यह परमेश्वर की रीति है, इसलिए यह सर्वोत्तम है। आज आप संभवतः जीवन की छांव में हैं, आपके सामने परेशानियां हैं, कठिनाइयां आपको घेरे हुए हैं, आज आपके भाग में आग है और आपने मीठा नहीं कड़वा ही कड़वा चखा है। यदि आज आपकी यह स्थिति है तो मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं और आपका विश्वास करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के ही मार्ग पर हैं और यदि आप उसके साथ चलते रहें तो ज्योति में प्रवेश करेंगे। भजन संहिता 30 के 5 में लिखा है, कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। मेरे प्रियो, इस बात को मन में बसाकर हम उस दुख उठाने वाले उद्धारकर्ता को निहारते रहें। मेरे मित्रों, आज मेरे लिए और आपके लिए एक आशा है, क्योंकि प्रभु यीशु मुझे और आपको शांति दे सकता है, आनंद दे सकता है और छुटकारा दे सकता है। क्यों ना आज हम उसी परमेश्वर की ओर निहारें, ताकि हम अपने जीवन में उस महान शांति को प्राप्त करें जो मुझे और आपको वह देना चाहता है। मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, और मैं आशा करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने प्रभु यीशु के बलिदान को देखा है, क्रूस पर मृत्यु को देखा है, और आपने जान लिया है कि उसी के द्वारा उद्धार है। आज के इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
मुझको मसीह के आने का इंतजार है, मुझको मसीह के आने का इंतजार है। ख्वाबों ख्यालों वो दिल के पास है, ख्वाबों ख्यालों वो दिल के पास है। मुझको मसीह के आने का इंतजार है। जिसने दी हजार खुशियां, टूटे हुए दिलों को जिसने दी हजार खुशियां, उसके दीदार के लिए दिल बेकरार है, उसके दीदार के लिए दिल बेकरार है। ख्वाबों ख्यालों वो दिल के पास है, ख्वाबों ख्यालों। पास है, मुझको मसीह के आने का इंतजार।